भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। शुद्ध भकत चरण रेणु भजन आनु कूला। माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन करी। कृष्ण वस्ती वसती वाली परमादरबारी। शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल। कृष्ण वस्ति माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन करी। कृष्ण वस्ती वसती वाली परमे आदर भरी। गौर आमर ये सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थान हेरी वामी प्रणय भगत संगे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सादा जाचे। गौर बिहत कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। प्रसाद सेवा करते हैं सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु रमानु कूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनु कूला जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहत गोलक भाए चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषनी जानी गौर प्रिय शाक सेवन जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाया प्रति दिवस परम सुख स्वीकार करता शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला जया भक्ति विनोद जया भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जया भक्ति विनोद जया भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के
लोग गायत्री हो नायक हो फलाने
आज भी वैसे पानीपत था मेरा लेक्चर पर मैंने उधर वहां मना कर दिया, मैंने आज नहीं आऊंगा इधर। जैसे शुरू में मैंने कहा कि जब वहां पर कोठी थी मंदिर में, तो वहां पर मैं आया करता था, संडे फेस्टिवल या सैटरडे को होता था, सैटरडे को होता था रात को, तो तब वहां पर आया करता था मैं। उसके बाद जब से ये मंदिर बना तो मैं बहुत ही कम आया हूँ, दूसरी या तीसरी दफा, यहाँ पर तीसरी दफा शायद आया हूँ लेक्चर देने के लिए। वैसे तो अभिषेक के लिए और महाराज के साथ तो आया हूँ, लेकिन लेक्चर देने के लिए दूसरी तीसरी दफा आया हूँ। दिल्ली में ।1972 में फिजिकली प्रभुपाद जी से मैं मिला था, प्रभुपाद जी के दर्शन हुए थे, उन्होंने बहुत कृपा की मेरे पे। वैसे तो 71 में फोटो देखी थी प्रभुपाद जी की, सिंधिया हाउस है ना कराड प्लेस में, इसका चौराहा पार करके आगे LIC ग्राउंड हुआ करता था, वहां पर पहला 10 दिन का प्रोग्राम था प्रभुपाद जी का। फर्स्ट जब इस्कॉन बन गया, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में बना दिया, तो उसके बाद वापस इंडिया में जब आए थे तो एक प्रोग्राम हुआ था क्रॉस मैदान बम्बई में, तो उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली में 71 में जब प्रोग्राम था तो मुझे तो खैर नहीं पता था, लेकिन मैं जब वहां से निकला, सॉरी मुझे बस में बैठा हुआ था, तो लेफ्ट साइड में तो LIC ग्राउंड वहां पर प्रोग्राम चल रहा है, राइट साइड में जहां पर अभी पालिका बाजार बन गया हुआ है, वहां नीचे कुछ नहीं था पहले, सिर्फ पार्क था, वहां पर फुहारे वगैरह चला करते थे, लेकिन वहां पर एक ओपन एयर कॉफी हाउस हुआ करता था, एक छोटा सा कॉफी हाउस था, और एक पोस्ट ऑफिस था छोटा सा, एक कमरे का पोस्ट ऑफिस था, वहां प्रभुपाद जी की फोटो लगी थी, डंडा लेके सन्यासी वाली खड़े हैं, वो नीचे क्या लिखा वो नहीं मुझे पता क्या लिखा है, पढ़ा भी नहीं गया, बस में बैठा था मैं। तो पहली मुलाकात मेरी ऐसे प्रभुपाद जी के साथ हुई, और उसके बाद प्रभुपाद जी ने मुझे आकर्षित कर लिया। एक घंटा लगता था कनाट प्लेस से हरिनगर घंटाघर जाने के लिए, वहां वहां रहता था मैं, तो सोचता रहा कि कहीं देखा है इनको, कहीं देखा है जो फोटो देखी है। तो उसके 3-4 महीने बाद मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला, भगवद गीता एज इट इज, किसी के घर में, तो पढ़ने के बाद फिर तो प्रभुपाद जी ने आकर्षित तो पहले ही कर लिया था। एक्चुअली भागवतम में भी आप पढ़ते हैं ना कि जिसने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया, आप लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं, अचानक नहीं आप लोग आ गए भक्ति में, कुछ ना कुछ आपके पुण्य कर्म हैं, कुछ भक्ति की हुई है पिछले जन्म की, तभी आया है। तो उसी प्रकार हमारे भी कुछ भाग्य रहे होंगे, पिछले जन्म की कुछ भक्ति की होगी, तो एकदम प्रभुपाद जी की फोटो देख के आकर्षित हो गए थे। उसके बाद फिर फिजिकली जब पता चला कि प्रभुपाद जी आने वाले हैं, तो 72 में प्रभुपाद जी के दर्शन किए मैंने बंगाली मार्केट में, वहां पर रात को 9 बजे मंदिर बंद हो चुका था, राधा पार्था सारथी जी, हमारे राधा पार्था सारथी है दिल्ली स्टाफ क्लास में, यही राधा पार्था सारथी आनंद निकेतन आरकेपुरम के पास यही थे। तो पहले दर्शन मुझे राधा पार्था सारथी के ही हुए थे, ललता विशाखा नहीं थी उस समय, सिर्फ यही थे। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी के दर्शन हुए मंगाली मार्केट में। उस समय जो वृंदावन मंदिर है इसका बन रहा था और उसका उद्घाटन जब होगा तो क्या करेंगे ऐसा प्लानिंग बना रहे थे। तो वहां पर ब्रिजमोहन चांदी वाले बनारसीदास स्टेट में रहते थे वो, अभी तो शरीर छोड़ गए, वो उनका लड़का है, यहाँ पे सोना सोना बिकता है ना बाजार में, क्या नाम उसका, चांदी चौक के पास, द्रीवा का चेयरमैन है वो आजकल लड़का उनका। तो लड़का तो उसमें छोटा और रहा होगा, उसके पिताजी ब्रिजमोहन चांदी वाले और उन्हें एक और दो आदमी और थे बैठे थे, तो मैं भी जाकर के बैठ गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई प्रभुपाद जी के पास जाने में, सीधा छोटा सा कमरा था यहां से लेके यहां तक। उस कमरे में एक साइड में लोहे की अलमारी पड़ी थी, पूरा सीन याद है मुझे, और दीवार के साथ ये कुशन लगा करके प्रभुपाद जी ऐसे करके बैठे थे, और उसके सामने वो ब्रजमोहन चांदी वाला और दो तीन आदमी और थे। तो इस्कॉन बनाने में प्रभुपाद जी ने बड़ी तपस्या की है इस्कॉन से पहले, हालांकि अमेरिकन देशों में यूरोपियन देशों में प्रचार हो चुका था, 100 से लगभग इतने मंदिर बन चुके थे उस समय, लेकिन इंडिया में तो अभी हमारा कोई मंदिर नहीं था। तो वो चाहते तो किसी अच्छी जगह भी ठहर सकते थे, बड़े कमरे में ठहर सकते थे, लेकिन तपस्या देखिए छोटे से कमरे में वो थे, और वहां पर एक ही टॉयलेट था। जो भक्त रहते थे 10-12-15 जो भी थे उस समय, सारे विदेशी थे, तो एक ही टॉयलेट में सब झुक जाते थे। इतनी तपस्या प्रभुपाद जी ने की है, और अभी तो हम लोग बैकुंठ में रह रहे हैं, हमें बैकुंठ बना के दे दिया प्रभुपाद जी ने, किसी चीज की कमी नहीं है अभी। सो ऐसे करके मेरी मुलाकात प्रभुपाद जी से हुई थी। मैं उस समय तीसरा भाग्यशाली था, मैं, मेरे से पहले दो इंडियन भगत थे, उनकी दीक्षा हो चुकी थी, एक हमारी गुरु बहन थी रतनमाला देवी दासी, उसके हस्बैंड आर्मी में ब्रिगेडियर थे और खुद वो सेंट्रल स्कूल में इंड्यूसगंज में वाइस प्रिंसिपल थी, और एक थे कृष्ण गोपाल दास फर्स्ट, वो होम मिनिस्ट्री में थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में, और तीसरा मैं था दिल्ली। ऐसे ही हैदराबाद में भी 3-4 लोगों की दीक्षा हुई थी उन्हीं दिनों 72 में। तो टोटल में लाकर के ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 10 लोगों से ज्यादा नहीं थे इंडियन मरे हिंदुस्तान में, बाकी विदेशों में तो इंडियन दीक्षा होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ ग्रीवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमः नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जया प्रभुपादा प्रभुपादा श्रीला प्रभुपादा प्रभुपाद की। धन्यवाद। वो नाम भूल गया मुझे, गंगादास की बेटी यहां पर सेवा करती है ना, जारा दे आती है, अभी आई है। मुझे याद आ गया कि जब मेरी दीक्षा हुई थी तो इनके पिताजी मेरे साथ थे वहां पर वृंदावन में। वृंदावन में दीक्षा हुई थी मेरी राधाष्टमी को ना, तो इसके पिताजी मेरे साथ गए थे, लेकिन इनकी दीक्षा नहीं हुई थी तब, वैसे मेरे साथ गए थे। लेकिन इतना है कि हिजुलनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी के शिष्यों में से फर्स्ट शिष्य इनकी माताजी ही थी शायद, कृष्णांगी देवी दासी। तो ये तो सब बच्चे थे, पढ़ते थे अभी तुम्हें, जयराधे और इनके दोनों भाई हैं, पढ़ते थे उन समय। ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 52, मैंने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दिया है, ये टॉपिक का नाम है। जब ये लीलामृत बन रहा था, जब संग्रह हो रहे थे अलग अलग जगहों से, तो उस समय दो तीन जगह मैं भी गया हूँ ये इकट्ठा करने के एक्सपीरियंस उनके लिए। डालमिया जी जो है विष्णु डालमिया जी, उनके पास गया था, उनके ऑफिस में भी, उनके घर में भी, और दो तीन जगह और गए थे। शीशगंज गुरुद्वारे के सामने एक लाइब्रेरी है, मारवाड़ी लाइब्रेरी, वहां से भी कुछ मटेरियल छपा हुआ था प्रभुपाद जी का, इसको उन बनने से पहले का, वो भी वहां से भी कलेक्ट किया था कुछ। तो हम भी भाग्यवान रहे हैं, भाग्यशाली रहे हैं। मैंने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दिया है, क्या मतलब? अभी आपके हिस्से का कार्य है, हमारे हिस्से का कार्य है ना, प्रभुपाद जी ने तो अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दिया, अभी हमारे हिस्से का कार्य क्या है? प्रचार करना पूरी दुनिया में, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको कृष्ण के बारे में बताना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, अभी सबकी जिम्मेदारी है। कमरा गुलाब और चमेली की मालाओं से पूरा पूरी तरह सजाया गया था। कीर्तन दल मंद और मधुर स्वर में गायन कर रहा था। श्री प्रभुपाद घंटों मौन रहते थे और जब वे बोलते थे तो सामान्यतः बहुत संक्षेप में बोलते थे, फिर भी अपने प्रकरण पहले की भांति ही थे और वे उसी शुद्ध कृष्ण भावना भावित रूप में बोलते थे। बंबई में ठेकेदार की धोखाधड़ी की बात याद करके उन्होंने कहा, केवल धोखा देना ही पाप नहीं, किंतु धोखा खाना भी पाप है। मैंने और मेरे शिष्यों ने कितने प्रयत्नों और कठिनाई के साथ ये धन इकट्ठा किया है और अब उसकी बर्बादी हो रही है, मैं इसे नहीं होने दूंगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि क्योंकि बड़े मेहनत से ये पैसा इकट्ठा किया है, अभी तो पैसे तो खूब बारिश हो रही है लक्ष्मी की, लेकिन शुरू शुरुआत में मुझे याद आ गया एक बात, मॉडल टाउन में किसी के घर में प्रभुपाद जी 10 रुपए या 15 रुपए लेने गए थे। उसने किसी लाला ने बोला था, अग्रवाल थे या कौन थे, कि मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा या 15 रुपए दूंगा, ऐसा करके 15 रुपए काफी होते थे उस समय। तो प्रभुपाद जी वो पैसा लेने के लिए उसके घर में गए दान बेल बजाई तो नौकर बोलता है कि शायद हो सकता घर ही में हो मालिक, लेकिन बोलते घर में नहीं है, तो ऐसा करके दरवाजा बंद कर दिया उसने। प्रभुपाद जी बाहर ही खड़े रहे, चलो ठीक है थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये बात मुझे एक घोड़िया मठ वाले ने बताई थी हैदराबाद में जब मैं गया था अभी तक, कहते उतनी देर में हमारा कोई आदमी घोड़िया मठ का, वो भी जाते हैं डोनेशन लेने के लिए, साइकिल पे बैठ करके जाते हैं जगह जगह पर, उन्होंने कॉपी बना रखी होती है, हर महीने में कलेक्शन करते हैं, कोई 5 रुपए 10 रुपए जितने भी देते हैं वो ले लेते हैं हम लोग, अभी भी जाते हैं हम लोग साइकिल पे। तो वो उधर से निकला तो वो महाराज जी को जानता था, प्रभुपाद जी को जानता था, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला कि आप यहां कैसे, ये व्यक्ति मुझे दान देंगे 10 या 15 रुपए जितना भी थे, तो उसके लिए मैं खड़ा हूं। वो जो घोड़िया मठ के भगत थे वो एक घंटे के बाद वापस आए तो देखा तो प्रभुपाद जी फिर भी वहां पर खड़े हुए हैं, 10 रुपए के लिए वो एक घंटे से ज्यादा वहां पर खड़े रहे, इतनी वैल्यू थी पैसे की। हम लोग वैल्यू को पैसे की वैल्यू नहीं समझते आजकल इस्कॉन में, लेकिन प्रभुपाद जी ने सिखाया मनी इज माई ब्लड। अभी तो अंधाधंध लोग खर्च कर देते हैं, प्रभुपाद जी तो दो दो पैसे का भी हिसाब रखते थे। सो वही चीज यहां पर बताई है, मैंने और मेरे शिष्यों ने कितने प्रयत्नों और कठिनाई के साथ यह धन इकट्ठा किया है और अब उसकी बर्बादी हो रही है, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तो बर्बादी अभी भी हो रही है बहुत सारी, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, जो भी भक्त है कंट्रोल करना चाहिए। जब भी हमारी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, खास करके जो ठेकेदार वगैरह होते हैं अभी भी लूटते हैं, वो लिहाज नहीं करते हैं कि ये भक्त हैं तो उनको छोड़ दीजिए, वो हमें इतना इशार होना चाहिए कि हम निगाह रखें उनके ऊपर कि कोई हमारे इस्कॉन के पैसे को लूटे ना। श्रील प्रभुपाद इस तरह की टिप्पणियां प्राय उस समय करते थे जब वे बिस्तर पर लेटे होते थे, जो ही वे बोलने लगते थे त्यों ही उनकी सेवा में रत कुछ भक्त उनके शब्दों को पकड़ने के लिए उनके निकट आ जाते थे। कभी कभी कीर्तन बंद हो जाता था, प्रभुपाद के दैनिक कार्यक्रम का भाग जो पहले जैसा ही बना रहा था वह था आधी रात में श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने के लिए उनका उठ जाना, सवेरे की मालिश और स्नान तथा अपने सचिव से प्रतिदिन का समाचार सुनना। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा प्रभुपाद जी को, बहुत कम सोते थे वो, 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे। रात को उठ करके लाजपत नगर में मैंने देखा, जहां तो वो कभी जप कर रहे हैं जब थक जाते हैं तो चलते चलते जप कर रहे हैं, या फिर वो डक्टाफोन पे बोलते रहते थे, सारी रात जागते रहते थे वो। दिन में बड़ी मुश्किल से आधा घंटा घंटा सोते थे, मतलब टोटल मिला करके दिन रात 24 घंटे में 3 घंटे लगा लो, इससे ज्यादा नहीं सोते थे। तभी तो इतना बड़ा कार्य किया, कोई आसान कार्य थोड़ा कोई है, पूरे लिटरेचर को ट्रांसलेशन करना। उन्होंने कार में बैठकर सवेरे घूमना जाना चाहा तथा अर्चा विग्रहों का दर्शन करना बंद कर दिया था। उनका खाना करीब करीब नहीं के बराबर हो गया था। पहले प्रभुपाद जी की आदत थी कि श्रृंगार आरती से पहले वो मॉर्निंग वॉक में जाया करते थे, वो रूटीन था उनका। कभी कभी मुझे भी मौका मिलता था जाने का, जैसे लोधी गार्डन यहां भी जाते थे, एक हमारे प्रिंटर थे माखी जानी, वो कार भेजते थे जब प्रभुपाद जी जहां होते थे, तो उनकी कार में बैठ करके अगली सीट में प्रभुपाद जी बैठते थे, पिछली सीट में 2 भक्त बैठ जाते थे, तो उन 2 में से एक को, एक मैं भी कभी कभी हो जाता था, तो लोधी कॉलोनी वगैरह में जाते थे सैर करने के लिए प्रभुपाद जी, और ठीक गुरु पूजा से पहले वापस आ जाते थे श्रृंगार आरती के पहले। ऐसे ही बंगाली मार्केट में तो रोड के ऊपर ही टहलते थे। प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व वैसा था कि कोई भी देख करके एकदम उनको हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता था। प्रभुपाद जी भी उसको उतना ही आदर देते थे, वो भी खड़े हो जाते थे। ये नहीं है कि देखते नहीं है, वो भी उनको देख करके हरे कृष्णा बोलते थे। मतलब प्रभुपाद जी की ऐसा था कि कोई भी आदमी देख ले ना, उसका मन श्रद्धा से भर जाता था, ऐसा उनका पूरा फेस था। सो उनका खाना करीब करीब नहीं के बराबर हो गया था। उन्होंने निचली मंजिल के अपने बिस्तर से ऊपरी मंजिल के बिस्तर पर ले जाया जाने के लिए कहा, और कभी कभी वह अपनी मेज पर बैठ भी जाते थे। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को गिरिराज का एक पत्र पढ़कर सुनाया, जो पत्र की उपेक्षा प्रेम पूर्ण प्रार्थना अधिक थी। गिरिराज ने उसमें श्रीमद् भागवत से प्रह्लाद महाराज का एक श्लोक उद्धृत किया था। उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, मेरे प्यारे प्रभु, ओ परमेश्वर, अपनी एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं के संसर्ग के कारण मैं साधारण जन समुदाय की तरह सर्पों से भरे अंधकूप में गिरता जा रहा हूं, किंतु आपके सेवक नारद मुनि ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और सिखाया कि ये दिव्य स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य उनकी सेवा करना है। मैं उनकी सेवा का त्याग कैसे कर सकता हूं? नारद मुनि तो सबके गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, गुरु परंपरा में आते हैं। प्रह्लाद महाराज को तो सिखाया उन्होंने, लेकिन प्रभुपाद जी ने हम लोगों को सिखाया है। श्रील प्रभुपाद गिरिराज के प्रति उसकी श्रद्धापूर्ण निर्भीक सेवा के लिए बड़े स्नेही थे और आंखें बंद किए उसकी प्रार्थना के प्रत्येक शब्द का पान करते हुए उन्होंने उसे सराहना पूर्वक सुना। उसी शाम को श्रील प्रभुपाद बैठकर संसद के एक सदस्य श्री सीताराम सिंह से मिलने के लिए उठकर बैठ गए। यद्यपि वे प्रसन्न थे कि एक उच्च स्थानीय व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा था, किंतु उन्होंने बात परम स्तर पर की और भौतिक भ्रम जालों का पर्दाफाश किया। उसके तुरंत बाद उन्होंने दलगत राजनीति में डूबे तंग दिल मनोवृत्ति के राजनीतिज्ञों पर प्रहार किया। उन्होंने ऐसे राजनीतिज्ञों की धूर्तता का भी बंडा फोड़ किया जो भगवद गीता के आधार पर अहिंसा का समर्थन करने का दावा करते थे। ये सबको पता है किसका बंडा फोड़ किया, नाम नहीं लूंगा मैं। ऐसे अवसरों पर श्रील प्रभुपाद के साथ रहने वाले भक्त लगभग भूल ही जाते थे कि वे अपने जीवन के अंत की तैयारियां कर रहे थे। श्रीमान सिंह के जाने के बाद उस रात बाद में प्रभुपाद ने कहा, मैं कुछ और भी बोल सकता था, अथवा यदि कृष्ण की इच्छा होती हो तो जो कुछ मैंने कहा वही काफी है। श्री प्रभुपाद की कृष्ण के बारे में बोलने और कृष्ण भावना अमृत को अन्यों तक पहुंचाने में मदद करने की इच्छा असीम थी। प्रभुपाद जी ने एक दफा बंगाली मार्केट में कहा था, मैंने अपने कानों से सुना, थोड़े से लोग आते थे वहां पर बंगाली मार्केट में शाम को मिलने के लिए, तो कोई बात चल रही थी तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं तो कृष्ण के विषय में बोलते 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 ही मर जाऊंगा। तो वही करके दिखाया प्रभुपाद जी ने। जब प्रभुपाद जी लास्ट समय में थे तो वो तब भी भक्तम का ट्रांसलेशन डिक्टाफोन में उसके मुंह के सामने रख करके बोलते थे। वो तो वो पहले भी यही कहा करते थे कि मैं तो कृष्ण के बारे में बोलते बोलते ही मर जाऊंगा। अच्छा, तो यहां पर लिखा है किंतु वे कितने समय तक और रहेंगे और दूसरों को कितना कृष्ण भावनामृत दे सकेंगे, ये तो कृष्ण पर निर्भर था। यदि उन्हें और समय मिला तो वे कृष्ण की इच्छा का प्रचार भौतिक संसार में करते रहेंगे। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा हुई कि अब उन्हें प्रस्थान करना चाहिए तो वे उसे भी स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करेंगे। यदि उन्हें इस संसार में शीघ्र प्रस्थान करना भी पड़ा तो भी उनकी तीव्र करुणा और धर्मोपदेश की इच्छा का अंत नहीं हो सकता। सर्वोपरि उनकी इच्छा ये थी कि उन्होंने संसार की दुखी जीवात्माओं की रक्षा के लिए जिस विश्वव्यापी आंदोलन का प्रारंभ किया है उसे चलते रहना चाहिए। इन सब बातों से पता चलता है कि प्रभुपाद जी कोई मामूली आदमी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने लगभग 550 वर्ष पूर्व ही भविष्यवाणी कर दी थी कि पृथ्वी अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरे नाम, पृथ्वी के हर गांव गांव में शहर शहर में मेरे नाम का प्रचार होगा, भविष्यवाणी हो गई। उसके बाद 1800 ईस्वी में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी यही कहा था कि एक जो काम रह गया है चैतन्य महाप्रभु का, एक सेनापति ऐसा आएगा, लोचनदास जी ने अपनी कवितावली में लिखा है चैतन्य भूल गया है, हाँ चैतन्य मंगल में, चैतन्य मंगल में उन्होंने लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जितना मैंने कार्य कर दिया है उसके बाद जो लोग अधार्मिक बन गए हैं और विदेशों में भाग गए हैं, अब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं ना उसमें बताया गया कि जितने भी जर्मन जर्मनी जापान ये इलाका जितना भी है रशिया ये सारे एक्चुअली क्षत्रिय थे, ये भागवतम में बताया गया, ये तो वो पलायन करके भाग गए थे, अधार्मिक बन गए, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, शुरू कर दिया मांस सब कुछ। तो ऐसे लोग जो यहां से पलायन कर गए हैं उनको भी जो मेरा सेनापति है वो पकड़ करके उनको भी कृष्ण भक्ति देगा। भगवान कृष्ण का जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो लगाए हुए फल हैं वो उनको बांटेगा। तो अभी सारा विश्लेषण कीजिए, ऐसा को कौन हो सकता है? देखिए प्रभुपाद जी के अलावा और कोई हुआ ऐसा? हमारे दादा गुरु जी ने अपने शिष्यों को प्रभुपाद जी के गुरु भाइयों को भेजा विदेशों में, लेकिन सारे थोड़े कामयाब हुए, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो पूरी दुनिया में कृष्ण नाम का ढंका बजा दिया। अभी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं होता हो, भगवदगीता ना पढ़ी जाई हो। यहां तक चाइना में भी, चाइना में भी कुछ दिन पहले पिछले एक महीने पहले चाइनीज लड़कियां और लड़के आए हुए थे हमारे मंदिर में, राधा पार्थ सारथी मंदिर में। रशिया में तो अभी सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो भक्त बन रहे हैं रशियन बन रहे हैं, चाइनीज भी बहुत बन रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा, कुत्ते खाने वाले जो कुत्ते खाने वाले हैं वो भी शुद्ध शाकाहारी कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी बन रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने करके बताया ये सच, भविष्यवाणी पूरी की। हाँ। तो यहां पर एक लाइन आई है, सर्वोपरि उनकी इच्छा यह थी कि उन्होंने संसार की दुखी जीवात्माओं की रक्षा के लिए जिस विश्वव्यापी आंदोलन का प्रारंभ किया उसे चलते रहना चाहिए। अभी चलते रहना चाहिए तो कौन चलाएगा? आप लोग, सब लोग, आपका काम है, हम सब का काम है, प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य, आगे जो आने वाले शिष्य हैं उनका काम है। ये नहीं है कि खुद तो अपना उद्धार कर लिया, हाँ जी मैं तो भक्ति कर रहा हूं, सोलह माला भी जाप कर रहा हूं, भगवदगीता भी पढ़ रहा हूं, मंदिर में भी आता हूं, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो स्वार्थ हो गया, अपना काम तो आपने कर लिया, लेकिन हम सब कहन हैं, साधु हैं हम लोग, साधु का काम क्या है? पर दुख दुखी, मेरा भला हो गया तो बस दुनिया खड्डे में जाए, ऐसा नहीं। सबका भला सोचना है, पहले तो अपने परिवार से शुरू करना है, फिर अपने मोहल्ले से, समाज से, फिर ऐसा करके आगे दायरा बढ़ा सकते हैं। तो ये आप सबका कार्य है कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचाना हम सबका कार्य है, आप सबका कार्य है। खास करके भगवत गीता अगर वितरण करते हैं, आप वितरित करते हैं तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी को हम लेक्चर देके आते हैं तो वो तो भूल भी सकता है, लेकिन जब भगवत गीता देंगे, भागवत देंगे उनको, तो उनको जब भी याद आएगा तो एकदम पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा उनका, तो भगवान के भी प्रिय बन जाएंगे। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में कि जो मेरा प्रचार करता है मुझे अतिशय प्रिय है, कहा है ना ऐसा 18वें अध्याय में। विश्व भर के जीवीसी सचिवों को सूचना भेज दी कि शिलपोपाद शीघ्र ही इस संसार से प्रस्थान कर सकते हैं, एक पैरा पढ़ूंगा मैं, और वे चाहते थे कि सब सचिव वृंदावन में उनके पास आ जाएं। जितनी जल्दी हो सका जीवीसी के लोग अपना कार्य छोड़कर उनके पास आ गए। पहली बार फरवरी में मायापुर की वार्षिक बैठक में अधिकांश लोग प्रभुपाद के साथ थे। तमाल कृष्ण ने सबको प्रभुपाद की हाल की बदलती दिशाओं के बारे में बताया, किस तरह वे बंबई में धर्मोपदेश कर रहे थे किंतु कुछ खा नहीं रहे थे, किसी तरह वे ऋषिकेश गए, किस तरह वे ऋषिकेश गए थे और वहां उनकी हालत बदतर हो गई थी, और किस तरह वे वृंदावन आए थे इस आभास के साथ कि उनका अंत निकट है। तमाल कृष्ण गोस्वामी भी हमेशा प्रभुपाद जी के साथ रहते थे, जब भी देखते, जब भी इंडिया में आते थे तो वो साथ में रहते थे, और भी कुछ सीनियर डिवोट जो भक्त हैं वो रहते थे। जब मेरी दीक्षा हुई थी तब भी तमाल कृष्ण गोस्वामी पास में खड़े थे। तमाल कृष्ण ने बताया कि श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि उन्हें लगातार पवित्र नाम की औषध दी जाए, और सभी जीवीसी के सचिव और सन्यासी लोग उनके साथ कीर्तन करने को एकत्रित हो जाएं तथा एक वसीयत बना ली जाए जिसमें इस्कॉन की संपत्तियों की रक्षा और इस्कॉन संस्था के आगे चलते रहने को सुनिश्चित किया जाए। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा हुआ है, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 10,000 वर्ष तक ये इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है कृष्ण भावना मत संघ ये चलेगा कम से कम। वैसे तो मैं कहां पढ़ रहा था, कहीं पढ़ा मैंने, गृह संहिता में या कहां कहीं पढ़ा, ब्रह्मा के आधे दिन तक कृष्ण भावना अमृत जो है वो फैलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी के कहने के अनुसार 10,000 साल तक तो कम से कम है, तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए, खूब पुस्तकें वितरण करनी चाहिए, खुद अपनी भक्ति भी करनी चाहिए, औरों को भी करानी चाहिए। तमाल कृष्ण ने यह भी उल्लेख किया कि प्रभुपाद ने कहा था कि उनके प्रति उन लोगों के प्रेम का प्रदर्शन प्रभुपाद के प्रस्थान के बाद उनके इस्कॉन को बनाए रखने से होगा। हाँ, अभी हम और लोगों को देखते हैं, बहुत सारे मठ संस्थाएं होती हैं, जब तक उनके गुरु होते हैं तब तक तो खूब फैलता है, लेकिन गुरु के जाने के बाद जल्दी ही वो कलैप्स हो जाता, खत्म भी हो जाती है, संस्था का नाम भी नहीं रहता है, ये आमतौर पे होता है ऐसा। प्रभुपाद जी ने ये कहा कि ठीक है आप लोग मुझे प्यार करते हो, लेकिन मेरे जाने के बाद पता चलेगा कि कितना आप लोग प्रचार करते हो, कितना आप संस्था को आगे बढ़ाते हो, वो असल में सच्चा प्यार माना जाएगा। तो आप देखिए कितना प्यार करते हैं प्रभुपाद जी से आप। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने अपने गुरु भाइयों को विश्वास में लेते हुए कहा कि स्वयं उसकी भावनाएं मिश्रित प्रकार की थी। ये दुख का समय था, फिर भी श्रील प्रभुपाद अब इस बात से राहत अनुभव कर रहे थे कि जीवित रहने के लिए उन्होंने और अधिक संघर्ष ना करने का निर्णय कर लिया है। तमाल कृष्ण ने कहा कि प्रभुपाद के सब चिंताओं से मुक्त हो जाने पर उन्हें प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं अनुभव हो रहा है। भवानंद गोस्वामी ने जो जीवीसी के लोगों में से सबसे पहले पहुंचे थे औरों को बताया कि किस तरह उन्होंने प्रभुपाद से कहा था कि एक ओर तो उन्हें दुख अनुभव हो रहा है कि प्रभुपाद संसार से प्रस्थान कर रहे हैं, दूसरी ओर वे प्रसन्न भी थे कि वे इस ग्रंथ भौतिक संसार से मुक्त होकर कृष्ण के पास जा रहे हैं। प्रभुपाद ने भवानंद को भी जानता हूं मैं, इनके सामने मेरा रहा है संबंध। प्रभुपाद ने उनकी भावना की पुष्टि की थी और कहा था कि यद्यपि उनके गुरु महाराज को उनके प्रमुख शिष्यों के असद व्यवहार के कारण जीवन के अंत में घृणा हो गई थी, किंतु स्वयं प्रभुपाद को अपने बारे में ऐसा नहीं लगता था। प्रत्युत उन्हें अपने शिष्यों का साथ पसंद था और वे अनुभव करते थे कि उनके शिष्य उनकी आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी चेतावनी दी थी कि वे इसको उनको नष्ट ना करें और उसे खंडित करके दूसरा गौड़िया मठ ना बनाए। यहां पर प्रभुपाद जी ने एक बात कही है कि जो मेरे गुरु महाराज थे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अंत समय में उनको दुख हुआ था, काफी दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उनके जीते जीते ही जो उनके शिष्य थे आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया था, ये बिल्डिंग मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, अपना अलग अलग मठ बनाने के चक्कर में थे वो। और अभी भी देखिए अभी गौड़िया मठ के कई मठ बन गए हुए हैं। तो इससे हमारे दादा गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खुश तो नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी को कम से कम इतना यकीन था कि मेरे शिष्य ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, धन्यवाद सबका, हरे कृष्ण। मुझे अभी जाना है, अपने दादा पार्थसारथी मंदिर में भी लेक्चर है वहां पर अभी 10:30-11 बजे, हरे कृष्ण, भक्ति वृक्ष का लेक्चर है वहां पर। धन्यवाद सबका।